हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 49, 50 एंड 51। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा प्रलाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसां स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्शनं लोकस्य सत्यो विधुनोति कर्मशम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख साजया ये नीच पापा यदपाशयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता च यसतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समेरिषीणां ऋषभ प्रसीदता भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूषु पुरुष भूते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखं भुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ नाम श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 7 जिसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बताया। अब ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान की महानता के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं सश्रेयसामपि विभुर् भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सता प्रसीद देहि स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते च सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसीद देहि स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते च सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसीद भावस्य भावविहितस्य सतः प्रसिद्धि देहि स्वधातु विकमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते च सश्रेयसामपि विभुर् भगवान् यतोऽस्य। स मतलब वो, श्रेयसाम यानी समस्त कल्याण, जितना भी जीव का कल्याण है वही भगवान। अपि यानी भी, विभु यानी स्वामी, भगवान यानी भगवान, वही भगवान समस्त जीवों का कल्याण करता है। यतोस्य यत मना क्यों, अस्य मना जीव आत्मा का। और भाव स्वभाव विहितस्य सतत प्रसिद्धि, भाव यानी गुण, स्वभाव मतलब अपना स्वभाव, विहितस्य यानी कार्य, सतस सत मतलब समस्त उत्तम कार्य, प्रसिद्धि यानी अंतिम सफलता। जितने भी हमारे गुण हैं और जितने भी कार्यों की सफलता है वो वास्तव में उसका कारण जो है वो भगवान है। और इसके साथ साथ बता रहे हैं देहे स्वधातु विगमेनु, देहे यानी शरीर में, स्वधातु यानी निर्माण तत्व जो है, विगमे नष्ट होने पर, जब शरीर के बाकी जो तत्व हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, तब तत्र पुरुष न विशीर्य तेज, तत्र उसके पश्चात भी पुरुष यानी जीव आत्मा न विशीर्यते, नष्ट नहीं होता, अज वो जीव आत्मा जो है वो अमर है, अजन्मा है और उसका कभी विनाश नहीं होता है। अनुहद देखिए, जो कुछ भी कल्याण कर है सश्रेय सामपि, यानी जो कुछ भी कल्याण कर है उसके परम स्वामी भगवान है, विभुर भगवान यतोस्य, वो भगवान के कारण ही हो रहा है। क्योंकि जीव आत्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अवस्था में हो अथवा आध्यात्मिक अवस्था में हो, भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि, जो कुछ भी है चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाला भगवान है। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं, प्रसिद्धि अंतिम लाभ जो है वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्तिगत जीव आत्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्य माने, यानी जब देह का नाश भी हो जाता है जीव आत्मा उसी प्रकार बना रहता है, व्योमेव तत्र पुरुषेण विशीर्य जातः, जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जीव आत्मा अजन्मा तथा सनातन है, और जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 2.30 में पुष्टि की गई है कि देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्वं शोचितुम् अर्हसि। ए भरतवंशी, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा कभी नहीं मारी जा सकती। देहि नित्यम अवध्योयम, इसको मारा नहीं जा सकता, इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए नत्वं शोचितुम् अर्हसि, दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात भगवान श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, आत्मा के सत्य के विषय में तो भगवान ने पहले ही श्रीमद् भगवत गीता 2.30 में बता दिया गया। भौतिक तत्वमयी देह के विनष्ट होने पर भी जीव आत्मा नष्ट नहीं होती है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में रहता है, तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। इसी प्रकार उसके आध्यात्मिक जीवन में के कार्य भी भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें कर्मों के सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं कि हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि उनके फल नहीं मिले, क्योंकि उनके फल देने वाले साक्षात भगवान हैं। वो भगवान किसी के साथ भी अनजस्टिस नहीं करते हैं। जैसा जैसा जो कार्य करता है, उसे इसी जन्म में उसके फल मिलेंगे या नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे, और अगर हमारे कार्य आध्यात्मिक होंगे तो उसके बदले में हमको 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना परमेश्वर के तदात्मय प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता 4.11 में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हम, कि भगवान मनुष्य को उसी जीवन में उसके वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवों को अपनी इच्छा करने की छूट रहती है और भगवान उनमें तदनुसार फल देते हैं। मतलब जीव को अगर भगवान ने किसी चीज की छूट दी है ना, तो क्या जानते, इच्छा करने की छूट दी है। आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, और उसके अनुसार जीव कार्य करता है, और कार्य करने के बाद भगवान उसको फल देता है। इसे भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, इच्छा करके कार्य करने पर तक तुम्हारा अधिकार है, बाकी उसका जो रिजल्ट है वो मेरे ऊपर। इसलिए अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो इच्छा को बदलना होगा, क्योंकि ये इच्छा हमें फंसाती है, वो इच्छा जिसकी द्वारा हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। बस यही एक हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी इच्छा को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं। उसी इच्छा को यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए यूज करें, तो फिर वो इच्छा के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभलिषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की दृढ़ता से भक्ति करे। ये हर एक जीव आत्मा का कर्तव्य है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदा। हम जब तक अपने स्वरूप का कार्य नहीं करेंगे, तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आर सूरत में भगवान की भक्ति करें, दृढ़ता के साथ भगवान की सेवा करें। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या ध्यान करने के बजाय भगवान की नियमित भक्तिमय सेवा प्रत्यक्ष रूप से करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भक्ति के लिए नहीं है कि आपके अंदर कोई क्वालिटी होने की जरूरत नहीं, बस भक्ति के लिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जिस भगवान की आप सेवा कर रहे हो उसके अंदर श्रद्धा हो, और फिर हम भगवान की भक्ति में सेवा करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। वांछित फल क्या है? भगवत प्राप्ति ही तो है ना। यदि जीव
कुछ भी कर रहा है, ध्यान योग कर रहा है, ज्ञान योग कर रहा है, कर्म योग कर रहा है, मरने के बाद मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, मुझे भगवान प्राप्त हो जाए, मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, यही तो वांछित फल है। और इस वांछित फल को यदि हम इतनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, केवल नाम जप करना है, केवल भगवान की सेवा करनी है, भगवान को भोग अर्पण करना है, भगवान का श्रृंगार, कितना इंटरेस्टिंग है। और उसको करते करते यदि इतना सरलता से भगवत प्राप्ति या वांछित फल मिलता है, तो फिर कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु भक्तजन स्वभावतः भगवान के पार्षद रूप में रहना पसंद करते हैं। वे निर्विशेषवादियों की भांति आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन होना नहीं चाहते। अतः भक्तजन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार भगवान के दास, मित्र, पिता तथा युगल प्रेमी बनकर मनवांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। भगवत भक्त की 9 दिव्य विद्याएं हैं, यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि। और ऐसी सरल तथा स्वाभाविक भक्तिमय सेवाओं के अनुसरण करके भक्तगण उच्चतम पूर्णता प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्म के साथ तदाकार होने की उपेक्षा नहीं, कहीं उपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर है। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करने अथवा शून्य पर कृत्रिम रूप से ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी जाती। श्रील प्रभुपाद जी भक्तों के विषय में बताएं कि भक्तों को कोई भगवान के अंदर लीन होने की इच्छा नहीं होती है। भक्त तो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए वो अपने स्वरूप को नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि किसी भी स्वरूप में भगवान के साथ रहना चाहते हैं। चाहे वो मित्र के स्वरूप में हो, पुत्र के स्वरूप में हो, पिता के स्वरूप में हो, दास के स्वरूप में हो, किसी तरह से वो भगवान के साथ रहकर प्रेम करना चाहते हैं। इसलिए वो निर्विशेषवादी जो भगवान के अंदर लीन होकर अपने स्वरूप को नष्ट करना चाहते हैं, उससे कई अधिक श्रेष्ठ भक्ति पथ है। क्योंकि भक्त भगवान के अंदर लीन होकर स्वयं को नाश नहीं करता, भगवान को प्राप्त करके उसके साथ प्रेम का सुख लेता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, फिर भी भूल कर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती जिससे भगवान के साथ आमने सामने आकर के उनका संग किया जा सके। जीव तो अजन्मा है, ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता है। दूसरी ओर इस भौतिक शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फलस्वरूप ही होता है। इस प्रकार जीव आत्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का विकास होता, अतः आत्म तत्व से भौतिक शरीर जीवनी शक्तियों से उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान रहता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है, अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तब जीव आत्मा सफुलिंग का अस्तित्व शरीर में वायु की भांति बना रहता है। और अंतिम लाभ प्रदान करने वाले भगवान के निर्देशानुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया जाता है, जो भगवान से उनकी संगति के लिए उपयुक्त होता है। यह संगति सारूप्य यानी समान शारीरिक लक्षण, सालोक्य अर्थात भगवान के साथ उसी लोक में रहने की समान सुविधा, सारष्टि अर्थात भगवान की तरह समान ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा सामीप्य भगवान के साथ समान संगति के रूप में होता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब जीव का ये शरीर विनाश हो जाता है, जैसे श्लोक में बताया गया कि देही स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विषय। क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो बस आत्मा ही रहती। उसको जिस जिस लोक में भेजा जाता है उसके अनुसार उसको एक शरीर प्राप्त होता है।
जैसे यहाँ पर पांच प्रकार की मुक्तियों के बारे में बताया, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी और सामीप्य। यहाँ पर चार मुक्तियां बताई गई, वैसे पांच होते हैं। सायुज्य मुक्ति को तो उसका तो स्वरूप ही नष्ट कर देना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर लीन हो जाता है, लेकिन जो चार प्रकार की मुक्तियां हैं उसमें एक कौन सा शरीर होता है, समान भगवान के समान शारीरिक स्वरूप होता है, भगवान के साथ उसी लोक में रहने की सुविधा ऐसा शरीर होता है, और एक दूसरा होता है साष्टी, भगवान की तरह समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और भगवान के चौथा होता है सामीप्य, भगवान के साथ समान संगति, तो उसके लिए भी आत्मा को एक प्रतिकूल शरीर प्राप्त होता है। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई भक्त भौतिक संगति से अकुलुषित तथा अमिश्रित भक्ति में सेवा का चरण पूरा नहीं कर पाता तो उसे किसी भक्त या धनी के परिवार में दूसरा जन्म प्रदान करते हैं। ये श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत के विषय में बता रहे हैं, जिसमें भगवान 6.41 में बताते हैं, प्राप्य पुण्यकृताम लोका उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी रहे थे। भगवान इतने कृपालु हैं कि जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता या भक्ति के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको गिरा देते हैं, फॉल डाउन नहीं होता भक्त का, बल्कि इतने दयालु हैं कि यदि कोई भौतिक संगति के कलुषित तथा अमिश्रित भक्ति सेवा का शरण पूरा नहीं कर पाता तो उसे किसी भक्त या धनी परिवार में के घर में दूसरा जन्म प्रदान करते, बिना किसी जीवन संघर्ष के पुनः अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपने जीवन के शुद्धिकरण की शेष प्रक्रिया को पूरा कर ले और इस देह को त्याग करने पर तुरंत ही अपने घर भगवत धाम को वापस जा सके, इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। इस प्रसंग में श्रीजीव गोस्वामी प्रभुपाद कृत भागवत संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। एक बार आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कितने करुणामयी हैं, हम तो बार बार गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन भगवान की शरण में एक बार जब जीव आ जाता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते एक बार आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, फिर भले वो गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन भगवान जो है वो उसके साथ हमेशा रहते हैं और सदैव उसका मार्गदर्शन करते हैं, और भगवान खींच के उसकी, भले हमारी कभी ऐसा हो कि भक्ति पद से नीचे गिर जाए, लेकिन भगवान बार बार ऐसे भक्तों से मिलाते हैं, ऐसा एनवायरमेंट प्रदान करते हैं कि हम यही न प्रकार जीव का कल्याण हो, बस भगवान की एक ही इच्छा है। भक्त को मैं इस जीव का कैसे उद्धार करूं, इसके अलावा भगवान को और कोई काम ही नहीं होता है। एक बार जो महामंत्र का उच्चारण कर लेता है, एक बार जो उनकी शरणागति, उनको प्रणाम कर लेता है, बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब मुझे इसको अवश्य इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना है। तो भगवान कुछ न कुछ करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, गुरु महाराज को भेजते हैं, साधु संतों को भेजते हैं, और जीव को अपने इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए उत्साहित करते हैं, ताकि जीव जो है वो इस दुखों भरे जीवन से पार होकर भगवान को प्राप्त कर सके। आगे ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, वे कहते हैं, सोयम देवहितास्तात् भगवान विश्व भावनः समासेन हरिर्नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयात् सोयम् ते विहितास्तात् भगवान् विश्वभावनः समासेन हरिर्नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयात् सोयम् ते विहितास्तात् सो अयम वही है ते तुमको अभी ही तास मेरे द्वारा कहा गया। तात हे पुत्र भगवान विश्व भावना, भगवान यानी भगवान विश्व भावना मतलब प्रकट ब्रह्मांडों के सृष्टा, वही भगवान है जिसने सारे ब्रह्मांडों को विश्व भावना सारे ब्रह्मांडों के सृष्टा है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और समासेना मैंने तो तुम्हें जो कुछ बताया वो बहुत संक्षिप्त में है। समासेना हरेर हरि अर्थात भगवान के बिना नान्यत ना मतलब कभी नहीं अन्यत मन अन्य कोई अन्यस्या अन्यस्मात मन कारण स्वरूप समासेना हरे नान्यत अन्यस्मात सदा सच्चयत अन्यस्मात मतलब कोई भी और कारण हो नहीं सकता किसका सदा सत यानी प्रकट हो या तात्विक हो सत हो असत हो च यत तथा चाहे जो भी हो जो कुछ भी है वो तो भगवान के ही कारण है उसका कारण स्वरूप भगवान है। मैंने तो तुम्हें जो बताया समाज से ना बहुत ही थोड़ा संक्षिप्त में बताया। अनुवाद देखिए हे प्रिय पुत्र मैंने तुम्हें संक्षिप्त में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि सामान्य रूप से हमें नाशवान भौतिक जगत तथा भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने में प्रयत्नशील बद्ध जीवों का ही अनुभव है। हम क्या देखते हैं संसार में जो लोग हैं जो कि इस भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते। अतः ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि यह अनित्य जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की करामत है और यहाँ पर अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे बद्ध जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। इन घटनाओं से भरपूर कार्यकलापों का एकमात्र कारण परमेश्वर अर्थात हरि है जो समस्त कारणों का कारण स्वरूप है। किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भगवान निर्गुण रूप में सर्वत्र व्याप्त है। वे इन समस्त बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों की अंतः क्रिया से पृथक रहने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता 9.4 में पुष्टि की गई माया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न साहं तेष्वस्थितः। अर्थात ये सारा जगत भगवान कहते हैं ये सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप से भरा हुआ है। तमाम जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो श्री प्रभुपाद जी उसी बात को बता रहे हैं कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही सर्वत्र व्याप्त हैं। जो कुछ भी प्रकट रूप में है वह उनकी शक्ति पर निर्भर है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हैं। शक्ति तथा शक्तिमान एक होने पर भी एक दूसरे से पृथक है। जैसे श्री प्रभुपाद जी अक्सर एक राजा का उदाहरण देते हैं कि राजा जो है वो शक्तिमान है और जो कुछ भी राज्य है वो राजा की शक्ति है। राजा भले कहीं पर भी हो लेकिन शक्ति तो उसकी सारे कंट्री में रहती है ना। उसी तरह भगवान अपने धाम में रहता है और जो कुछ भी कारण और कार्य सत और अचल असत इस संसार में दिखता है वो भगवान की शक्ति है। भगवान को इस दुखमय संसार का सृजन करने के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार के राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जो राजसत्ता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके लिए कारागार रूपी सरकारी संस्थापन अनिवार्य है। इसी प्रकार भगवान के इस दुखमय भौतिक संसार की क्षणिक सृष्टि उन लोगों के लिए की गई है जो उनको भूल गए हैं और इस झूठे संसार पर प्रभुत्व जताने का प्रयास कर रहे हैं।
बहुत ही सुंदर बात यहाँ श्रीमद् प्रभुपाद जी बताए कि ये संसार कोई सुख भोगने की जगह नहीं है, ये तो जेल है। हम भगवान का विरोध करके इस संसार में आए हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं किया, तो भगवान ने अपने राज्य से निकाल कर जेल में डाल दिया। जैसे कोई अगर कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो वहां पर जाकर अगर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अच्छा बन जाता है तो क्या होता है, तो जेल से निकलने के बाद उसे वापस से उसकी वास्तविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। उसी तरह से हम भी इस जेल में हैं, यदि हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करकर भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाती है यहाँ। और इस झूठे संसार पर प्रभुत्व जमाने का यहाँ पर हम सब प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वे पति जीव आत्मा को अपने धाम में वापस ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं और इसके लिए वे प्रामाणिक धर्म शास्त्रों, उनके प्रतिनिधियों तथा अपने अवतारों के रूप में बद्ध जीवों को अनेक अवसर प्रदान करते रहते हैं। चूंकि उनका इस भौतिक जगत से कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है, अतः इसके सृजन के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे कि भगवान, हम भगवान से विरोध करके, भगवान की आज्ञा का पालन ना करके संसार में आए, लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं कि फिर भी हमें बार बार अवसर प्रदान करते हैं, साधु पुरुषों के द्वारा, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, अवतारों के द्वारा, कि किस तरह से ये बद्ध जीव पुनः मेरी ओर आकर्षित हो और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे। इसलिए जीव को सदैव भगवान का शुक्र करना चाहिए, कभी भी भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो भगवान की इच्छा से नहीं बल्कि अपने कर्मों के कारण प्राप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।